नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। सुरेश खन्ना ने कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चरण 3, 4 एवं 5 में 81.25 लाख टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश एवं 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 15,000 रुपए तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 1,050 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल रखा गया है। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने फिनटेक कंपनियों और डिजिटल लैंडिंग ऐप्स के साथ लोन देने के लिए टाइप को लगभग रोक दिया है। ऐसा पहली लोन डिफॉल्ट गारंटी के तहत किया गया है। इसकी वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी तक संवेदात्मक समझौते पर स्पष्टता नहीं दी है। आमतौर पर ऋणदाताओं ने ये तरीका अपनाया है कि नॉन रेगुलेटेड कंपनियाँ यानी फिनटेक कंपनियां जो आरबीआई के दायरे में नहीं आती के साथ एफएलडीजी को नहीं किया जा सकता है। बता दें कि एफएलडीजी एक क्रेडिट रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट है जिसमें थर्ड पार्टी बैंकों और एनबीएफसी जैसे विनियमित संस्थाओं के लोन पोर्टफोलियो में डिफॉल्ट का एक निश्चित प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति करने की गारंटी देती है। बैंक सीधे तौर पर लोन देने वाले ऐप्स को सीधे कर्ज नहीं दे सकते हैं जो हाल ही में अनुचित कर्ज प्रैक्टिस के लिए आरबीआई और सरकार की जांच के दायरे में आए हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफएलडीजी पर आरबीआई का रिजर्वेशन उचित है क्योंकि ऐसा ना होने से सिस्टम में रिस्क बढ़ने का खतरा है, क्योंकि कई सारे लैंडिंग ऐप्स आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करके लोन दे रहे हैं। एक एक्सपर्ट का कहना है, नियामक का तर्क है कि ये एफएलडीजी लाइसेंस को किराए पर देने में आगे है जो अभी विनियमित संस्थाओं के पास है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हाई एनपीए हो सकता है। ऐसा होने से बड़ा खतरा है जो विनियमित संस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की बैठक का ब्यौरा जारी होने से पहले कमजोर वैश्विक रुख के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 329.12 अंक टूटकर 60,343.60 अंक पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 97.3 अंक के नुकसान से 17,729.40 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, एनटीपीसी और बजाज फाइनेंस के शेयर नुकसान में थे। वहीं मारुति और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर लाभ में थे। अन्य एशियाई बाजार भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। स्थानीय शेयर बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 4 पैसे टूटकर 82.83 प्रति डॉलर पर आ गया। फॉरेक्स डीलरों ने कहा कि विदेशी कोषों के प्रवाह तथा अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर में कमजोरी से रुपये का नुकसान सीमित रहा। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.79 प्रति डॉलर पर स्थिर खुला। बाद में ये 82.83 प्रति डॉलर पर आ गया। ये पिछले बंद स्तर की तुलना में 4 पैसे की गिरावट है। पिछले कारोबारी सत्र में मंगलवार को रुपया 82.79 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.09% के नुकसान से 104.01 पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विमानन क्षेत्र लोगों को नजदीक ला रहा है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहा है। उन्होंने बुधवार को कहा कि अधिक हवाई अड्डों और बेहतर संपर्क की वजह से आज लोग नजदीक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ट्वीट साझा किया। इसमें सिंधिया ने कहा है कि 19 फरवरी को घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या कोविड पूर्व के नए उच्च स्तर 4.45 लाख पर पहुंच गई है। मोदी ने ट्वीट किया, अधिक हवाई अड्डे और बेहतर संपर्क विमानन क्षेत्र लोगों को नजदीक ला रहा है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहा है। कोविड से पहले घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या प्रतिदिन औसत 3,98,579 थी। सिंधिया ने कहा कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। रविवार को घरेलू उड़ानों से 4,44,845 लोगों ने यात्रा की। भारत की सड़कों पर कारों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और 2022 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 14 से 15 करोड़ कार मौजूद हैं। देश की बढ़ती कारों की संख्या के साथ सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है, जिसमें ज्यादातर हादसे खराब ड्राइविंग, सीट बेल्ट न लगाने के कारण होते हैं। मगर हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का नाम दुनिया में सबसे खराब चालकों वाले देश के रूप में नंबर 4 पर लिस्ट किया गया है। दरअसल उबर ने अपना वार्षिक ट्रैवल इंडेक्स जारी किया है, जिसे कंपनी ने राइडिंग विद इंटरसिटी नाम दिया है। इस वार्षिक ट्रैवल इंडेक्स रिपोर्ट में संगठन ने दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे खराब ड्राइवरों की सूची तैयार करने के लिए 50 से अधिक देशों में ड्राइवरों का अध्ययन किया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर नमस्कार।